मेरे पास उसके शर्त मानने के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। वैसे भी अब मैं खुद उसको अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। इस खुदगर्जी से भरे रिश्ते के बोझ को ढोने की कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे। हमारी मंजिल जुदा है और हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर ले। मुझे अब उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बार बेबी का बर्थ हो जाए, उसके बाद निया का चैप्टर मैं अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। और यकीन मानो, मेरा ये फैसला लेने के बाद से मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी। मेरे लिए पैसों से कहीं गुना ज्यादा मायने रिश्ते रखते हैं। अगर इन पैसों के बदले मुझे मेरा बच्चा सही सलामत मिलता है तो मैं खुश हूँ। अगर इस प्रॉपर्टी के बदले मुझे मेरी जिंदगी का सुकून मिलता है तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं। जिंदगी है, मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है और पैसे कमाए जा सकते हैं, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या मतलब रह जाएगा इतनी दौलत का। आई नो अभी तुम्हें मैं कमजोर लग रहा होऊंगा, तुम मेरे डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होगी, पर मैंने जो किया है अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किया है और मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। अगर मैं आज कमजोर पड़ भी रहा हूँ तब भी मुझे ये बात मानते हुए कोई हिचक नहीं, क्योंकि मेरी ये कमजोरी मेरे बच्चे को जिंदगी दे सकती है और उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट अब मेरे लिए मैं खुद भी नहीं। अर्जुन रुका और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, पता है इतने सालों में मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि निया के लिए उसका करियर इतना मायने रखता है, इसलिए मैंने उसके हर फैसले में उसका साथ दिया। कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि शादी के इतने सालों के बाद भी ऐसी कोई न्यूज़ आई क्यों नहीं, पर मुझे आज पता चला कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। इसके लिए मुझे उससे कोई शिकायत ही नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी थी, उसका करियर था, तो फैसला भी उसका होना चाहिए था। पर इस बार जब प्रेगनेंसी के बाद भी उसने अपना फैसला नहीं बदला और अपने फायदे के लिए मेरे बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गई, तब मुझे एहसास हुआ कि अपने बच्चे के आने की खुशी क्या होती है और जब उसकी जान पर बनाए तो एक पिता की क्या हालत होती है। वो चंद मिनट जब मैं ऑफिस से हॉस्पिटल के बीच का सफर तय कर रहा था, उस हर मिनट में मैं एक नई मौत मर रहा था। मौत के खौफ को पहली बार महसूस किया था जब ओटी में निया को देखा था। पहली बार किसी अपने को खोने के डर को इतनी करीब से महसूस किया था कि दोबारा कोई रिस्क लेने की हिम्मत नहीं बची थी मुझसे। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए झुकना पड़ा मुझे उसके आगे। पड़ गया था मैं कमजोर, क्योंकि जिसे अभी ठीक से पाया तक नहीं, उसको खोने के डर से मैं अंदर तक सहम गया था, और वही दर्द और डर फिर से महसूस कर सकूं, इतना मजबूत नहीं था मैं। मुझे कल एहसास हुआ कि जो इंसान सारी दुनिया से अकेले लड़ने का दम रखता है वो भी कमजोर पड़ता है, तब जब बात उसकी अपनी औलाद की हो। एक आम माँ बाप अगर हारते हैं तो अपने बच्चे के आगे हारते हैं, वैसे ही मैंने भी इस हार को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस हार के बदले मुझे मेरे बच्चे की जिंदगी मिलने वाली है। मैं अपने फैसले से खुश हूँ, पर शायद तुम्हें मेरा फैसला गलत लगे, क्योंकि अभी तक तुमने वो फील नहीं किया जो मैं फील कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा होगा, शायद उस दिन तुम मुझे और मेरे फैसले को बेहतर तरीके से समझ सको। अर्जुन अब खामोश हो गया और उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। भावुक हो गया था वो। कल जिस डर को उसने जिया था, आज वो डर उसकी आंखों में आंसू बनकर उतर आया था, इसलिए उसने अपना चेहरा फेर लिया। सच में कमजोर पड़ गया था वो, और शायद अपनी कमजोरी और आंसू वो सृष्टि को दिखाना नहीं चाहता था। सृष्टि कुछ पल खामोशी से उसको देखती रही, फिर स्टीयरिंग पर कसी उसकी हथेलियों पर उसने अपनी हथेली रखते हुए कहना शुरू किया, कमजोर नहीं है आप, बहुत स्ट्रांग हैं। अपनी खून पसीने की कमाई यूं ही किसी के नाम कर देना आसान नहीं, और उससे भी कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है प्यार के भेस में मिले धोखे को स्वीकार करके उस दर्द को सहकर भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेना। आपने अपने आने वाले बच्चे के लिए न सिर्फ अपने दर्द और तकलीफ को भुलाया, बल्कि उसके लिए उस इंसान के साथ रहने का फैसला कर लिया जिसे देख कर आपको पल पल उसके दिए धोखे की याद सताए। जिगरा चाहिए होता है उसके लिए, और वो आप में है। आपने अपने बच्चे के लिए जो फैसला लिया है वो हर कोई नहीं ले सकता। आप सबसे अलग हैं और बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि आज मेरी नज़रों में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक कहा था आपने, शायद मैं अभी आपके दर्द और तकलीफ को ना समझ सकूं, पर इतना जरूर समझ गई कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, और वो बहुत लकी होगा जो उसे इतने अच्छे लविंग और केयरिंग डैड मिलेंगे। आपने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा और मुश्किल फैसला लिया है, देखिएगा आपका ये सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाएगा। आपका बेबी सही सलामत इस दुनिया में आएगा और आपकी रूठी खुशियों को वहीं फिर से आपसे मिलवाएगा। अर्जुन की निगाहें अब सृष्टि की तरफ मुड़ गईं, तो सृष्टि ने अब मुस्कुराकर आगे कहा, वैसे तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, पर मैं खुद को और भी खुशकिस्मत समझूंगी अगर आप मुझे अपने बेबी के बर्थ के बाद उसको अपनी गोद में लेकर प्यार करने का मौका दें। मैं उससे थोड़ी जान पहचान कर लूंगी और साथ ही उसको उसके डैडी के सीक्रेट्स भी बता दूंगी, फिर उसके लिए आपको समझ पाना थोड़ा आसान हो जाएगा।
सृष्टि की चंचल बातें एक बार फिर अर्जुन के लबों पर आई मुस्कान की वजह बन गई। तुम्हारी इस विश को मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगी कि हमेशा यूं ही आपके दर्द की साथी बन सकूं, क्योंकि अपनी खुशियों को हम किसी के भी साथ बांट सकते हैं, पर जिसके सामने हम अपना दिल खोल कर रखते, बेचिचक अपने दर्द को बयां कर दे, वो खास ही होता है। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ देर दोनों की बातें चली, फिर सृष्टि अपनी बाइक लेकर निकल गई। सृष्टि से बात करने के बाद अर्जुन काफी रिलैक्स फील कर रहा था। लबों पर हल्की मुस्कान काबिज थी और वो भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुका था। रेहान इस वक्त मुंबई में नहीं था, किसी काम से मुंबई से बाहर गया हुआ था और काफी बिजी था, इसलिए उसको यहाँ के बारे में कुछ खबर नहीं थी। और रश्मि निया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर रिलैक्स हो गई थी कि अब वो शान या आरवी की जिंदगी में आने की कोशिश नहीं करेगी। आरवी अपने और शान के रिश्ते में बढ़ती नजदीकियों को महसूस कर पा रही थी और यही उसकी खुशी का सबब थी, पर वो अनजान थी इस बात से कि ये खुशियां अब बस चंद पलों की मेहमान थी। उसकी जिंदगी में तूफान दस्तक दे चुका था, पर अब उसको अपना असर दिखाना बाकी था और ये तूफान उसकी जिंदगी और खुशियों को तहस नहस करने वाला था। सुबह से शाम हो चुकी थी और कल के शान के उखड़े मूड की वजह से आज आरवी बड़ी ही बेताबी से उसकी वापसी की राह देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शान ऑफिस से निकलकर घर जाने की जगह ठाकुर निवास पहुंच चुका था। इस वक्त अमरजीत जी वहां नहीं थे। शान को वहां देखकर सर्वेंट्स हैरान थे, पर उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि कोई उसको रोकने की हिम्मत न कर सका। गार्ड्स ने कोशिश की तो शान के गार्ड्स ने उन्हें गन पॉइंट पर लेकर शांत कर दिया और शान जंगल के शेर की तरह पूरे रौब से अंदर की तरफ बढ़ गया। निया को उसके आने के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो लिविंग रूम में ही सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी और सारे सर्वेंट्स को वो पहले ही वहां से भेज चुकी थी। शान ने लिविंग रूम में कदम रखा, इसके साथ ही उसकी नजर सामने बैठी नियति पर चली गई और उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने अपनी चिर परिचित अंदाज में पूरे रॉब के साथ सवाल किया। टू बी कंटिन्यूड। कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? लाइक एंड कॉमेंट करके बताइए।